الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم انشاء اللہ تعالیٰ سورت الجاثیہ کریں گے. سورت الجاثیہ، جاثیہ جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ دو زانوں بیٹھنا، گھٹنوں کے بل بیٹھنا، نیل ڈاؤن ہونا. اور یہ اس سورت کی آیت نمبر 28 میں آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورت الجاثیہ. اور یہ قیامت کے دن جو تمام انسان گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، اس پر یہ آیت ہے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ بات کی گئی ہے، اور باس بعد الموت، یعنی موت کے بعد جی اٹھنے پہ، قیامت کے دن کے یقین پہ، یہ اس سورت کے کچھ مضامین ہیں. یہ مکی سورت ہے اور مکی دور کے تقریباً مڈ میں نازل ہوئی. یہ حوامیم کے سلسلے کی ایک سورت ہے، سورت دخان کے بعد آئی ہے اور احقاف سے پہلے نازل ہوئی ہے. اس کے مضامین سورہ دخان سے کافی ملتے جلتے لگیں گے آپ کو. سورہ دخان اس پہ ختم ہوئی تھی کہ قرآن مجید کو اہل مکہ کی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ اس کا پڑھنا آسان ہو جائے، اور اس سورت کی جو ابتدا ہے وہ قرآن کریم کے تعارف سے ہی ہوئی. دوسری بات یہ کہ سورہ دخان میں بھی اس کائنات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت پہ دلائل دیے گئے تھے اور مشرکین کے عقائد کا رد کیا گیا تھا. اس سورت میں بھی اسی قسم کے مضامین ملیں گے آپ کو. تو جیسے کہ مکی صورتوں میں ہوتا ہے، توحید، رسالت اور قیامت کے دن کے بارے میں یقین، اس پہ بات ہوتی ہے، اسی طرح اس صورت میں بھی آپ کو ملے گی. اللہ اکبر. دیکھتے ہیں اس سورہ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة الجاثية آیت نمبر 1 to 21. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، حوامیم کے سلسلے کی سورت حامیم، اور اس کا معنی چونکہ ہم نہیں جانتے تو ہمیں ہمیشہ یہی کہنا چاہیے، واللہ یعلم مرادہ، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا اس کا مطلب ہے. اس کا مطلب تو یقیناً ہے لیکن ہم نہیں جانتے. اور میں نے آپ کو دو باتیں اس بارے میں بتائی ہیں، پہلے بھی بتا چکی ہوں، دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ حامیم یا جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں یہ ایسے ہی بیجا نہیں ہے. ایک تو یہ چیلنج ہے مشرکین مکہ کو کہ آپ اس طرح کا کلام لے آؤ جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، آپ اپنے آپ کو اہل زبان کہتے ہو اور اپنے آپ کو کہتے ہو کہ دوسرے تو عجمی ہیں اور ہم خالص زبان والے ہیں، اور سمجھتے ہو اپنے آپ کو اس زبان کا ماہر، تو آپ ایک کلام ایسا بنا کے لے آؤ. ایک چیلنج ان کو دیا گیا. انہی حروف سے یہ قرآن بھی بنا ہے لیکن اس کا مقابلہ کوئی کر نہ سکا. دوسرا بات یہ کہ جیسے کہ ایک اعلان کیا جاتا ہے متوجہ کرنے کے لیے، لوگوں کی توجہ لینے کے لیے، لوگوں کو تھوڑا جگانے کے لیے، تو جب کہا جائے گا حامیم تو کچھ لوگ متوجہ ہوں گے، ایک دم आपको अपनी तरफ यानी किसी की अटेंशन डाइवर्ट कराना, तो ये भी मकसद है एक। और बाकी वल्लाहु आलम। तंजीलुल किताब, और जैसे कि मैंने बताया कि अक्सर सूरतों में, ऐसा नहीं कि सब में, लेकिन अक्सरियत में आप देखेंगे, सिवाय चंद एक के, आप देखेंगे कि हरूफ मुकतात के बाद किताब की बात की गई, यानी इस कुरान की बात की गई। तंजीलुल किताब, तंजील जो है ये बागे तफ़ईल में से है, मस्दर है, इसमें तदरीज का माना आता है, यानी ओवर टाइम, आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन, यानी एक के बाद एक ऐसे ये किताब नाजिल करना, इस किताब का इस तरह है, यानी नाजिल नजूल भी इसके अंदर माना है, और इसके अंदर बताया भी है कि किस तरह नाजिल हुआ, और ये कौन सा नाजिल होना है जो आसमान दुनिया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पे नाजिल हुआ, वो तंजील कहलाता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हुआ ना, 23 साल लगे इसके अंदर। और जो लौहे महफूज से आसमान दुनिया पे आया वो इंजाल है, बाबे इफ़आल से, जिसमें एक दफा को उतरना, वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं उतरा, वो एक ही दफा अल्लाह ताला ने लौहे महफूज से आसमान दुनिया पे उतार दिया था इस कुरान को, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ये वही आती रही। तो इसलिए कहीं आपको इंजाल मिलेगा, कहीं तंजील। जब तंजील मिले तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये नाजिल होना है दुनिया में, ठीक है, जमीन के ऊपर। तंजील उल किताब, नाजिल करना है किताब का, मीन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से। ये पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से नहीं घड़ा, ये अल्लाह की तरफ से है, वो अल्लाह जो अल अजीज भी है और अल हकीम भी है। अब कुरान करीम में अल्लाह ताला की ये दो सिफात जो हैं अक्सर आप देखेंगे साथ साथ आती हैं, अजीज और हकीम, और बहुत दफा आई हैं। अजीज का माना कुव्वत वाला, ताकत वाला, और हकीम हिकमत वाला, और जिसका हुक्म चलता। तो यही क्यों लाई गई यहाँ पे, अल्लाह ताला की तो और बहुत सारी सिफात हैं, इन दो सिफात को लाने का क्या मकसद है ये अब हमें पता चलना चाहिए, क्योंकि ये कई दफा इस तरह से आया है, अल अजीज अल हकीम, और किताब के साथ या सूरतों के शुरू में। तो क्या मकसद है कि यही दो सिफात, अर रहमान और रहीम क्यों नहीं आ गई, अलीम और हकीम क्यों नहीं आ गई? तो बात यह है कि अगर तो तुम इस किताब को झुठलाते हो, तुम इस किताब को नहीं मानते, इस पर ईमान नहीं लाते जो अल्लाह की तरफ से है, तो याद रखना कि फिर तुम बच नहीं सकोगे, इसलिए कि वो ये किताब उस मालिक की तरफ से है, उसकी तरफ से है जो अजीज है, गलबे वाला, ताकत वाला, कुव्वत वाला, उससे बच के नहीं फिर जा सकते, कोई उसकी कुव्वत का मुकाबला नहीं कर सकता, फिर वो तुम्हें अपने जोर से पकड़ेगा, क्योंकि वो गालिब है, उसके गलबे को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये बात को शुरू में ही बता दिया गया ताकि हर बंदा समझ ले कि वो किसका कलाम पढ़ने के लिए जा रहा है, ये मामूली कोई बात नहीं है, ये ऐसे ही नहीं किसी का चलते फिरते, किसी का भी, किसी की भी बात कर दी जाए, चलते फिरते किसी का भी कलाम आ गया सामने और हमने सोचा कि भाई चलो इसको भी पढ़ के देख लेते हैं, ये भी एक किताब है, चलो इसको भी पढ़ लेना चाहिए। समझ लो, जब आप कलाम को खोलते ही हैं और इस सूरा को पढ़ने लगते हैं और भी कई जगह पे, तो समझ जाएं कि आप किसका कलाम पढ़ने जा रहे हैं, उसकी हैबत दिल के ऊपर तारी होनी चाहिए कि ऐसे ही नहीं है ये, इसको मामूली ना जानना, ठीक है। अगर तुम इस कलाम को झुठलाते हो, इसकी आयात को मामूली समझते हो, तो ये उसकी तरफ से है जिसके पास बहुत पावर है, बहुत इख्तियार है, जिसको कोई जेर नहीं कर सकता। अगर तुम इस किताब पे अमल करने को अपने लिए जरूरी नहीं समझते, तो उसके गलबे को महसूस करो, उसके जोर को और कुव्वत को महसूस करो कि फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। तो ये बड़े पावरफुल की तरफ से कलाम आया है, इन बातों को मामूली ना लेना जो आगे आएंगी, यूं ही उनको गुजार ना देना, उन पे गौर करना, अपने अमल में तब्दीली लाना। क्योंकि ये कलाम ऐसे ही नहीं कि किसी ऑथर ने ऐसे लिख दिया, कोई किताब आ गई आपके पास और आपने पढ़ी, उसके बाद साइड पे रख दी। अब आप कई किताबें पढ़ते होंगे, कई उसके अंदर नसीहतें लिखी, आपकी मर्जी है आप माने नहीं माने, लेकिन ये वो कलाम नहीं है, इसको मानना ही है। क्योंकि जो इसकी मुखालफत करेगा तो फिर ये उस अजीज की तरफ से है जो अपने मुखालफों पे गालिब आ जाता है। लिहाजा इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लें कि हमें क्या करना है इस कलाम के साथ, क्योंकि जो इसके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा कि मैं अपनी सोच या अपने लाइफस्टाइल या अपनी जो मेरी बातें हैं उनसे इसके ऊपर गलबा पा लूंगी, तो ऐसा नहीं होगा, तुम मगलूब होगे। और ये समझ लेना चाहिए कि जब इंसान ये समझता है ना कि अगर मैंने इस किताब के ऊपर अमल किया, इसके हुक्मों पे चला, तो फिर क्या हो जाएगा, मैं दुनिया में मगलूब हो जाऊंगी, लोग मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे, लोग मुझे ऐसे कहेंगे, लोग मेरा जीना मुश्किल कर देंगे, मैं क्या करूं। नहीं, ये कलाम जिसके अंदर ये अहकामात हैं, ये कलाम जो आपके पास आया है ये गालिब की तरफ से है, और जो इस पे अमल करेगा अल्लाह ताला उसको गलबा देगा। ठीक है, फिर अल्लाह ताला उसको गलबा देगा, क्योंकि ये उस जो अजीज है उसके कलाम पे आप अमल कर रहे हैं, तो डरने की बात नहीं है। फिर जो हुक्म इसके अंदर आते हैं इनको समझें कि ये अमल करना इसके ऊपर मुझे हमेशा ऊपर रखेगा, गलबा देगा। ठीक है, फियर्स निकाल दें, क्योंकि ये गालिब का कलाम है। देखें, किसी भी बात की अहमियत उसके कहने वाले से होती है। अब आपको एक मिसाल के तौर पे, एक बच्चा कोई बात कहता है, आप उसको इतनी अहमियत नहीं देते, एक बड़ा कहता है थोड़ी और अहमियत देते हैं, एक आपके शहर का कोई पुलिस वाला कोई बात कहता है तो उससे ज्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन आपके मुल्क का सरबराह कोई बात कहता है तो वो तो और ज्यादा अहमियत की हामिल होती। फर्क क्या पड़ा? फर्क ये था कि कहने वाले का फर्क था, चाहे बात सेम ही हो। तो जो कहने वाला होता है ना उसकी अहमियत होती है। ये देखें, ये कलाम उस कहने वाले का पता बता रहा है जो अजीज भी और हकीम भी है। जो अहमियत हमारे दिल में अल्लाह ताला की होगी वही उसके कलाम की होगी। अगर हमारे दिल में अल्लाह ताला की कोई अहमियत नहीं है जैसी होनी चाहिए, तो तभी इस कलाम की भी वो अहमियत नहीं होगी, वो इम्पोर्टेंस नहीं होगी। तो समझना चाहिए कि अगर इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है मेरी जिंदगी में, तो याद रखो ये अजीज की तरफ से है, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकोगे, तुम इसे भागो नहीं, वरना वो तुम्हें कंट्रोल कर लेगा, पकड़ लेगा, वो कुव्वत वाला है। इसकी मुखालफत करने का ना सोचना, और वो अल हकीम भी है। क्या मतलब कि जितनी बातें इस कलामे पाक में है वो बड़ी हिकमत वाली है, इसकी हर हर हुक्म हिकमत पे मबनी है। ऐसा नहीं है कि देखिए, एक बात होती है ना कि किसी ने वैसे ही कह दी, आज खुश था तो कुछ कह दिया, कल को परेशान है तो कुछ और कह दिया। अल्लाह ताला हिकमत वाला है, उसको हमारी हर जरूरत का पता, रहती दुनिया तक हमारे हालात का पता, वो जानता है कि किस जमाने के लिए कैसे अहकामात देने हैं, क्या चीज हमारे लिए नफामंद है और क्या नुकसानदेह है। उसके हर हुक्म में हिकमत है। जब इंसान ये कहता है ना कि नहीं, इस जमाने के अंदर ये चीजें नहीं चल सकती, ये आउटडेटेड है, तो वो अल्लाह ताला की हिकमत पे शक कर रहा है। जो भी वो करता है उसका हर काम हिकमत पे मबनी है। फिर हम कैसे कह सकते हैं ये वाला हुक्म जो है ना, ये नहीं एप्लीकेबल।
ये तो अब सदियां गुजर गई, कम अज कम इस जमाने में नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे वो सूद का हुक्म है, चाहे वो हलाल और हराम के और अहकामात हैं, चाहे वो किसी, उसका हर हुक्म हिकमत पे मबनी है, हर फैसला, हर बात। ठीक है, तो हम इस तरह से ये कह के अपने आप को इससे बरी जिम्मा नहीं कर सकते। उसने जो फैसले किए हैं अपनी मखलूक के बारे में, या जो अहकामात दिए हैं, वो इस सोच के साथ हम उन पे अमल करें कि ये अल हकीम की तरफ से है, अल हकीम की तरफ से, ये अल अजीज की तरफ से है, जिसके पास एब्सोल्यूट इख्तियार, इन्फिनिट इख्तियार है, जो चाहे करे, कोई उसको पूछने वाला नहीं, उसकी अथॉरिटी कि कोई हद नहीं है। क्या फाल उल्लीमा युरीद है, जो ये समझ के इस कलाम को पढ़ना, ये उसकी तरफ से नाजिल करता है। तो पहले किताब नाजिल करने वाले का तारुफ थोड़ा सा हो गया ना, अब जहन एक बन गया। आप देखते हैं जब किताबें कोई भी आप पढ़ते हैं, तो उसके अंदर शुरू में ऑथर के बारे में भी लिखा होता है कि भाई ये है इसका ऑथर, उसकी ये डिग्रियां, उन्होंने यहाँ से इल्म लिया और ये किया, और उसके बाद फिर आगे आपको जहन में बैठ जाता है कि अच्छा, भी बड़े किसी बड़े पढ़े लिखे की या बड़े एक्सपीरियंस की मैं बुक पढ़ने जा रहा हूँ। तो ये याद रखें, ये अल्लाह ताला का कलाम है, वो मामूली बात नहीं है। या दुनिया की दूसरी किताबों की तरह इसको ना समझे। इन्ना फिस्समावाति वल अर्द, बेशक जमीन में और आसमानों में क्या है, ला आयात लिल मुमिनीन, आयतें हैं ईमान लाने वालों के लिए, निशानियां। ये जमीन और आसमान अल्लाह ताला की तौहीद को बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला की तौहीद के लिए दलील है कि वो एक ही है जो बनाने वाला है। इसमें भी आसमानों में क्या कुछ है, वो बेशुमार चीजें आसमानों के अंदर है, जो कुछ का हमें पता चला, कुछ का तो पता ही नहीं है। आफाक के अंदर नजर दौड़ाओ, आसमानों के अंदर देखो और जमीन में देखो, तुम्हें निशानियां नजर आएंगी। इसकी जो जो ईमान लाने वाले हैं उनके लिए, यानी जो मान जाना चाहते हैं, यहां पे ये नहीं कि जो पहले से ईमान लाए हुए, बल्कि जो इस चीज के अंदर भी सीरियस हैं कि हाँ, हम वो वाले लोग एक होते हैं ना, जो मैं ना मानू की उनकी बात होती है, बस कुछ भी बता दो मैंने मानना ही नहीं, उनका अपना जहन होता है, बस उन्होंने उसी पे रहना होता, जिद में पड़े रहते हैं, वो कहते हैं बस मेरी बात ही सही है, मैंने मानना नहीं है। उनके लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, जो मान जाने वाले हों, जिनका जहन ऐसा हो कि जब मैं कोई चीज हक की देखूंगी तो मैं मान जाऊंगी, उनके लिए बहुत निशानी है। आज इंसान चांद पे पहुंच गया, इंसान ने वहां से खलाओं में जाके देख लिया कि कितना कुछ है इस कायनात के अंदर, कहाँ तक ये फैली हुई है। सूरज के बारे में जानना, दूसरे प्लैनेट्स के बारे में जानना, दूसरी गैलेक्सीज के बारे में जानना, उसके बाद क्या है? जान लिया तो उसके बाद क्या जहन में ये नहीं आया कि इसका कोई बनाने वाला है, और वो कितनी ज्यादा बड़ी कुदरत का मालिक है जिसने इतनी बड़ी बड़ी चीजें बना डाली, उसके पास कितना इल्म होगा, कितनी हिकमत होगी, कैसे वो इनको चला भी रहा है। क्योंकि बना के छोड़ देने से क्या होता, हजारों साल से चीजें बन के चल रही हैं इतनी हार्मनी के साथ, तो अगर इनको कोई वॉच करने वाला ना होता, कोई इनका निगरान ना होता, तो टकरा जाती, खत्म हो जाती, हादसात होते यहां पे। लेकिन हजारों साल से सूरज निकल भी रहा है और गुरूब भी हो रहा है, सोचते नहीं। आसमानों पे तारे निकलते हैं, जमीन के अंदर कितना कुछ है जो तुम्हें इनवाइट करता है कि मेरे अंदर गौर व फिक्र करो, ये आयात हैं। एक आयात वो है जो इस कुरान में है, एक आयात वो है जो कायनात में बिखरी पड़ी है। अल्लाह ताला की निशानियां, एक फूल की पत्तियों में भी आपको अल्लाह ताला की निशानी नजर आएगी, एक एक पत्ते के अंदर निशानी नजर आएगी, एक एक चरिंद परिंद के अंदर निशानी नजर आएगी। इंसान गौर तो करे, जितना कुछ निकल रहा है जमीन के अंदर से उसमें निशानियां नजर आएंगी, आसमान कैसे बगैर सतूनों के खड़ा है इसमें निशानी नजर आएगी। कितना कुछ अल्लाह ताला ने बिखेर दिया, कभी नहीं ये सोच आई कि इन पे गौर करें। कितने लोग चल फिर रहे हैं, चाहे वो अपने आप को मुसलमान कहते हो, गैर मुस्लिम हैं, जो भी, सुबह करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, कामों पे जा रहे हैं, आसमान को भी देख रहे हैं, जमीन को भी देख रहे हैं, अपने सो के जागने को भी देख रहे हैं, इधर उधर भी चारों तरफ निशानियां बिखरी हुई हैं, उनको भी देखते हैं, मगर गौर कितना करते हैं। इसमें निशानी है, निशानी क्या होती, साइन, आयत साइन को कहते हैं, यानी कि इस चीज की निशानी अल्लाह ताला की तरफ पॉइंट करती है, किसी की निशानी किसी तरफ लेकर जाती है ना, किसी की निशानी किसी का पता देती है, उसकी याद दिलाती है। क्या बात है कि बनाने वाला इनका खालिक याद नहीं कभी आता। क्या बात है कि चीजें देखते हैं, कहते हैं वाह आज आसमान का कलर बड़ा खूबसूरत है, लेकिन किसने ये रंग बिखेर दिए इस आसमान के ऊपर, कितने तरह के रंग बिखरे होते हैं, कभी उनसे रब नहीं याद आता। जमीन के ऊपर देखें, समंदर भी हैं, गार भी हैं, पहाड़ भी हैं, सहरा भी हैं, रास्ते भी हैं, कितना कुछ है, कभी नहीं सोच आती। इंसान आज इतना मसरूफ हो गया कि उसने गौर व फिक्र करना भी छोड़ दिया। इसमें आयात है, ईमान लाने वालों के लिए साइंस है, उनको मिल जाएंगे साइंस, ये मोजज़ात ही तो है हमारे इर्द गिर्द बिखरे हुए। हम कहते हैं मुझे कोई साइन मिले कि एक अल्लाह है, और कितने साइंस चाहते हो, कायनात तो बिखरी पड़ी है उसके साइंस से, मगर चूंकि हम इन चीजों को जब से पैदा हुए देख रहे हैं इसलिए हमारे लिए कुछ है ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो उसकी पहचान करवाती हैं ये चीजें, एक चीज में भी गौर करें ना आपको उसकी पहचान होती है कि ये कितनी कारीगरी है उस मालिक की, वो कैसा हुस्नो जमाल वाला होगा जिसने ये खूबसूरती पैदा की, वो खुद कितना जमील होगा, उसके पास कितनी पावर होगी, उसके पास कितना इल्म होगा, उसके पास कितनी कुदरत होगी, ताकत होगी, वो कैसे इनको वॉच कर रहा होगा। बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो ये कायनात एक खुली किताब है, इसमें से सीखें अपने लिए, कभी गौर व फिक्र का वक्त निकालें अपने लिए। कुरान हमें जगह जगह गौर व फिक्र की दावत देता है, और फिर वफी खल्किकुम, और तुम्हारी अपनी पैदाइश में कितनी निशानियां, तुम्हारी अपनी पैदाइश भी निशानी है कि इंसान अपने आप में भी गौर व फिक्र कर ले, अगर अपने नफ्स में गौर व फिक्र कर ले, अपनी जात में, अपने जिस्म में अगर गौर व फिक्र करे। और कुरान कितनी दफा हमें ये भी गौर व फिक्र कराता है कि देखो तुम कैसे पैदा हुए, अपनी जात को ही देखो, क्या थे, नुतफा थे, अलका, मुदगा, कैसे तुम्हारा दुनिया में आने का रास्ता आसान किया, कैसे तुम्हारे अंदर आजा सारे काम करते, हम तो बाहर से देखते हैं ना, अंदर कितने सिस्टम चल रहे हैं उनके तो कोई हमें पता ही नहीं है, हम चला रहे हैं क्या, या खुद ब खुद ही चलते जा रहे हैं, बाय चांस सारे बन गए, बिल्कुल ठीक ठाक बन गए, या माँ को पता था उसने हर एक चीज बच्चे की बनाई, तुम्हारा तो कोई इख्तियार नहीं, तो फिर ये भी अंदाजा नहीं तुम्हारे अंदर है क्या क्या। तो जब वह इंसान अपनी तखलीक पे भी गौर करता है तो हैरान रह जाता है, अल्लाह अकबर, क्या क्या चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने मेरे जिस्म में एक दुनिया आबाद कर दी है, और एक-एक चीज इस जिस्म में कोई ना कोई फायदा दे रही है। वामा या बुसु मिन दाबतिन। अब ये आयात जो है ना, गौर व फिक्र की है, ये सिर्फ पढ़ के गुजरने की नहीं है। इनका तर्जुमा बहुत आसान है, लेकिन असल मकसद इनका क्या है? तर्जुमा याद करना नहीं, मकसद इनका क्या है कि आप इनको पढ़ के उसके बाद अपने रब को पहचाने, गौर व फिक्र करके। आज जितनी मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है, उसके बाद तो काफी चीजें इंसान को पता चल गई, कौन कौन से आज़ा मेरे अंदर हैं, कैसे सिस्टम्स काम कर रहे हैं। जो मेडिकल साइंस से ताल्लुक रखते हैं उन लोगों को ज्यादा ही पता है, फिर भी रब ने पहचान नहीं आती। आप जब गौर करते होंगे, कभी सोचते नहीं है किसने बना लिया, किसने चला दिया। और जिस दिन चाहेगा ये दिल धड़कना बंद हो जाएगा, सांस बंद हो जाएगी, सांस का आना और जाने पे ही गौर कर ले तो ये कितनी बड़ी निशानी है अल्लाह ताला। एक फिंगरप्रिंट पे ही गौर कर ले, और कुछ नहीं है तो एक फिंगरप्रिंट। कैसे यूनिक, कैसे अल्लाह ताला ने ये लकीरें खींच दी, कैसे सबका थंबप्रिंट अलग अलग। वमा यबसु मिन दाबतिन, और जो फैला दिए जानवरों में से। दाब्बा कहते हैं जो भी रेंगने वाला, चलने वाला, फिर हर जानवर के लिए आने लगा। चाहे आप समुद्रों के अंदर देख लें, जितनी मखलूक है, कितनी मखलूक है समुद्रों के अंदर, उनका खाना पीना, उनकी जरूरियात को पूरा करना, उनको आगे मल्टीप्लाई करना, कौन कर रहा है, किसने फैला दिए? नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में तो एक एक जोड़ा ही रखा गया था, फिर देखें आज कितने जानवर हैं। फिर इसके बाद हवाओं में कितने परिंदे उड़ रहे हैं। आयातिन लिकौमी यूकीनून, इस कौम के लिए जो यकीन करने वाले। यानी जो यकीन करना चाहते हो, ये नहीं यकीन पहले से जो जिनके पास है, यकीन जिनका मकसद हो, जिसके अंदर यकीन करने के लिए मादा हो, शक वाले नहीं, कि जो हर चीज में शक करे, क्या पता ऐसे भी है कि नहीं, क्या पता, हमें क्या पता जी, वो नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला की तौहीद भी बयान करती हैं ये आयात। और बास बादल मौत को जिसने तुम्हें अभी पैदा कर लिया, वो उस वक्त भी पैदा कर सकता है। तुम अगर जमीन और आसमान का बहुत नॉलेज आपके पास नहीं भी है, अपनी जात के अंदर ही देख लो। चलो अब अंदर के सिस्टम्स को भी छोड़ दो, बाहर ही देख लो, अपने आप को देखो और सोचो कैसे बनाया उसने। मगर जो इनकार ही करने पे तुले में हो, ये यकीनून भी इरादा है फेल के लिए आता है, कि यानी ये यकीन करने का जिनका इरादा तो हो, जिन्होंने पहले से ही सोच लिया मैंने नहीं मानना, मैंने यकीन करना ही नहीं है, मैंने तो शक ही करना है, वो नहीं, फिर उनको नहीं कुछ मिलेगा। वो निशानियां देखेंगे भी तो उसके बाद भी ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। वख्तिलाफ लैल व नहार, और इख्तलाफ में दिन और रात के इख्तलाफ। इख्तलाफ कैसे है, रात हो गई, उसके पीछे दिन आ गया, फिर रात आ गई, रात आ गई, फिर दिन आया। कभी दिन और दिन साथ नहीं होते, कभी रात और रात साथ नहीं होती। इसी तरह यानी एक खल्फ के मानों में हुआ ना, पीछे आना, इसी तरह इख्तलाफ कैसे है, कभी रात छोटी, कभी दिन बड़ा, और कभी दिन छोटा रात बड़ी, ये भी इख्तलाफ है। तो इसके अंदर नहीं तुम्हें कोई निशानी नजर आती, ये कैसे हो रहा है? असल में इंसानों को बहुत कम ऐसी चीजों के ऊपर तवज्जो जाती है जो उसको हमेशा से मिली हुई है, जब से पैदा हुए दिन और रात को देख रहे हैं। अगर ये छिन जाए और रात ही रात हो जाए, अल्लाह ताला फरमाता है फिर बताओ वो कौन होगा जो तुम्हारे लिए दिन ले आए।
और अगर वो दिन ही दिन कर दे तो बताओ वो कौन होगा जो तुम्हारे लिए रात ले आए। अब हम रात और दिन के इस सिस्टम को इस तरह समझिए आज कि जमीन घूम रही है तो रात और दिन का सिस्टम चल रहा है। सोचें क्या अजब के ये रात, ये जमीन रुक जाए, थम जाए तो रात रात ही रह जाए और दिन दिन ही रह जाएगा, और ये बदलेंगे नहीं तो ये क्या मुश्किल अल्लाह ताला के लिए। वो इस जमीन को रोक दे तो तुम कहाँ से लाओगे, कौन चलाएगा इसको, कौन घुमाएगा इसको। आप अपनी सारी ताकत, सारे मुल्क अपनी ताकत इस्तेमाल कर ले, नहीं कर सकेंगे। सोचते नहीं इसके अंदर। और फिर अमा अनज़लल्लाहु मिनस्समाई मिर रिज़्क, और जो अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल किया रिज्क, रिज्क वैसे तो बहुत सारी चीजों को कहते हैं मगर यहाँ पे स्पेसिफिकली बारिश मुराद है। वो अल्लाह ताला आसमान से जो बारिश नाजिल करता है, फअहया बिहिल अर्द बाउता मौतिहा, और उससे जमीन को जिंदा करता है उसकी मौत के बाद। जमीन को जो जिंदा कर सकता है, मुर्दा जमीन को, कि बिल्कुल बंजर मुर्दा पड़ी हुई है और लहलहाने लगती है, जिंदगी आ जाती है ना उसमें, खुश्क है बिल्कुल और कैसे तर हो जाती है, इससे नहीं तुम सोचते। हम तो देखते हैं हर सर्दियों में बिल्कुल दरख्त जो है उनके ऊपर एक पत्ता भी नहीं होता, और फिर जब गर्मियां आती हैं, बहार आती है तो ऐसे हरे भरे सरसब्ज हो जाते हैं। तो कैसे इतने खुश्क थे, ऐसे लगता था मर गए, ये तो हम देखते हैं ना। तो कौन नाजिल कर रहा है आसमान से बारिश को, और कौन तुम्हें रिस्क देता है इससे, इसके जरिए, क्योंकि इस बारिश के जरिए हमारे रिस्क का सामान होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको भी निशानी बनाया। ये बारिश को देखो, बारिश ना हो तो तुम्हारे लिए क्या हो। लेकिन तुम बजाय इसके ऊपर तवज्जो करने के, बारिश का मजा भी लूटते हो, उसमें पकवान भी पकाते हो और कहते बड़ा मजा आया, चलो पिकनिक पे चलते हैं, आज बारिश हो गई, और पकोड़े समोसे खाने लगते हैं, लेकिन कभी उस बारिश के ऊपर गौर करते, अल्लाह ताला हम कितनी गर्मी में थे, तू बारिश ना करे तो हम किस तरह से इस गर्मी को सहें। या अल्लाह तूने हमारे पर बारिश करके कितनी रहमत कर दी, और ये तो बाबरकत पानी इसको कहा गया, इसके बड़े फवायद बताए गए हैं, लेकिन इंसान ना सुनता है, ना समझता है, ना देखता है। इसीलिए तो जहन्नुम में जो जाएंगे कहेंगे ना, लव कुन्ना नस्माओ ना किलु मा कुन्ना फी अस्हाबे सईर, ना कुछ देख, अकल ही इस्तेमाल नहीं की। वतस्रीफ़ रिया ही आयातुल कौमी याकिलून, अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया ना इसमें, और हवाओं का जो चलना फिरना है इसके अंदर भी निशानी है, लेकिन अकल वालों के लिए जो अकल इस्तेमाल करें। हवाएं देखें सुभान अल्लाह हमें नजर नहीं आती, लेकिन कभी मशरिक से चलती कभी मगरिब से, और फिर कभी जुनूब कभी शुमाल से, कभी तेज कभी हल्की, कभी ठंडी और कभी लू। ये कौन इसके टेम्परेचर्स फिक्स कर रहा है, कौन इसकी डायरेक्शंस बदल रहा है, कौन इसको तेज चलाता है या हल्की चलाता है। हम बस इतना कहते थे हवा आज बड़ी ही अच्छी चल रही है, हाय आज बहुत लू है, इस पे नहीं लेकिन गौर करते कि ये चलाने वाला कौन है। गौर और फिक्र के लिए ये निशानियां हैं, यकीन करने वालों के लिए, अकल रखने वालों के लिए। तो अगर इंसान ने समझना हो ना तो एक एक चीज उसको समझाती है, और जो ना समझे तो फिर सारी कायनात की बिखरी हुई निशानियां भी उसको कुछ सबक नहीं देती। तो ये सब निशानियों का जिक्र आया, आठ निशानियों का जिक्र करके अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताया तिलका आयातुल्लाह, ये अल्लाह की निशानियां हैं, ये अल्लाह की आयात है, और ये खास तौर पे कुरान करीम में जो आयात आई हैं इनके लिए भी अपनी अकल को इस्तेमाल करो। और यहाँ पे देखें पहले ईमान की बात आई, फिर यकीन की बात आई, फिर अकल की बात आई। अगर तुम ईमान लाने वाले हो, अगर यकीन करने वाले हो, अगर अकल रखने वाले, यानी अगर तुम ईमान लाने वाले हो तो इन दलाइल पे गौर करो। अगर ईमान ही नहीं है, हक का की तलाश ही नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर यकीन के तलबगार हो तो फिर इन दलायल को समझो, अगर यकीन के तलबगार नहीं हो कम से कम अपनी अक्ल से ही काम ले लो। नहीं, ईमान है तो फिर तो इंसान गौर व फिक्र करेगा, ईमान लाने का मकसद भी है। अगर ईमान नहीं तो चलो इंसान यकीन का तलबगार हो, अगर यकीन भी नहीं तो कम से कम अक्ल तो इस्तेमाल कर लो। अक्ल से ही इन निशानियों को पैदा करने वाले तक पहुंच जाओ। तो ये जब हवाओं की बात आती है ना, पिछले कुछ अर्सा पहले यहाँ पे हरिकेन आया, तो वाकई उन हवाओं से अल्लाह ताला याद आ गया। इस कदर तेज हवा थी, यानी बारिश का इतना मसला नहीं था, हवा जो थी ना वो ऐसी थी कि ऐसे लग रहा था कि घर उड़ जाएगा अभी, और उसे खौफ आ रहा था। और देखिए अल्लाह ताला ने इन्हीं हवाओं से ही तो आद को खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। आद के ऊपर जो हवा आई थी वो कहा जाता है कि बैल के नथने के बराबर, इतने से अल्लाह ताला ने अपने हवाओं के खजाने से हवा को छोड़ दिया था। और आप देखते हैं जो हवाएं ही हैं किस तरह से उड़ा के ले जाती हैं, जो ये टॉर्नेडोज आते हैं, समुद्री तूफान जो होते हैं, कैसे उनके अंदर जो भंवर की तरह बन जाते, तो हवा ही होती है। किस तरह से हवाएं उड़ा के टॉर्नेडोज में, कैसे हवाएं उड़ा के लेके जाती हैं चीजों को ऊपर, बड़े बड़े ट्रक हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं ऊपर उड़ रही होती हैं। तो ये हवा भी अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है, इंसान सोचता नहीं है। ये सारी यानी ये चीजें हैं जो अकल वाल, यानी अगर आपके अंदर थोड़ी भी अकल समझ है ना तो आप इसको समझ सकते हो, इसके ऊपर गौर कर सकते हो, उसके बारे में सोच सकते हो। तिलका आयातुल्लाह, ये अल्लाह की आयात है, ये आयात जो है कुरान करीम की अल्लाह की आयात है, अल्लाह की वही है। नतलूहा अलैका बिल हक, हम इसको पढ़ते हैं आपके ऊपर हक के साथ, यानी बिल्कुल सच्ची बातें हैं ये। हक का मतलब है सच्चाई है इसके अंदर, कोई एग्जेजुरेशन नहीं है, कोई लगी लिपटी बातें नहीं है, कोई एडिशंस नहीं है अपनी तरफ से, कोई झूठ नहीं है। तो इंसान इस पे ईमान लेकर आए क्योंकि ये हक है। देखिए ये निशानियां बता के ना अल्लाह ताला ने आसमानों जमीन की तखलीक में, तुम्हारी तखलीक में, हर जानदार जो जमीन पे फैला हुआ है, फिर रात और दिन का इख्तलाफ, फिर आसमान से पानी का उतरना, फिर मुर्दा जमीन का जिंदा होना, फिर हवाओं का फिरना, ये सारी निशानियां अल्लाह ताला की कुदरते कामिला की हैं, बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर का इजहार कर रही हैं और उसकी तौहीद की हैं। और तीन निशानियां अकीदा आखरत की दलील हैं। कौन कौन सी? आसमानों जमीन की तखलीक, इंसान की तखलीक। अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि जब तुम लोग इनकार करते हो कि कैसे उठाया जाएगा, तो अंतुम अशद्दु खल्कन अम समा, तुम्हारा पैदा करना मुश्किल है या आसमान का? अल्लाह ताला तो आसमान खड़ा कर दिए, फिर तुम्हारा पैदा करना क्या मुश्किल है? और अपनी तखलीक में गौर करो तब भी दोबारा उठाया जाना क्या मुश्किल है जिसने पहली दफा पैदा कर दी, फिर मुर्दा जमीन का जिंदा होना, ये आखरत में ईमान के लिए दलील है। तो ये आयात है अल्लाह ताला की, ये आयात हमें सबक देती हैं कि गौर व फिक्र करो, सोचो, यकीन करो, अकल को इस्तेमाल करो। अल्लाह ताला ने ये अकल दी है, इसको लेके सिर्फ ऐसे ही जमीन के नीचे नहीं चले जाना। अल्लाह ताला ने अकल दी थी इसी बात को समझने के लिए। इस अकल से अपने रब को पहचानो, अपने मालिक को पहचानो। देखें जानवरों में इंसाहिर इंसान से कम अकल है ना, मानते हैं ना आप? लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि जो जानवर है ना वो भी अपने मालिक को पहचानता है, अपने मालिक की एक आवाज़ पे रिस्पॉन्स देता है। आप कुत्ते को देखें, आप बिल्ली को देखें, वो अपने मालिक की आवाज के ऊपर, यानी क्या मालिक उसको क्या थोड़ा बहुत खाना ही देता है ना, फौरन रिस्पॉन्स देते हैं, भागते हैं एक आवाज के ऊपर। और इंसान इतना ही अकल रख के भी कुछ सोचता ही नहीं कि मेरा कोई मालिक है, बिल्कुल तवज्जो ही नहीं उस तरफ। हैरत होती है। जो अभी मैं एक मैंने इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें जानवरों की वो बता रहे थे बातें ना, तो सुभान अल्लाह, उन्होंने कहा कि इवन कुत्ते के बारे में उन्होंने कहा कि हर एक की अपनी नेचर है, अपना मिजाज है, कोई इस तरह से है, कोई ऐसे है, उनको वो सुधाते हैं किस तरह से करते हैं, फिर वो किस तरह से अपने मालिक के आगे दुम हिलाता है, तो उसका मतलब क्या है, वो कैसे अपने मालिक के आगे लेट रहा है, वो कैसे अपने एक मालिक की सीटी को भी पहचानता है, उसके लिए दौड़ता है, भागता है, उसके तक पहुंचता है, कैसे मालिक की एक इशारे को भी जान लेता है, और वो सैड है, एंग्जाइटी है उसको, तो उसके अंदर भी उसको कैसे कंफर्ट करता है। तो सारी चीजें बता रहे थे इस बारे में, हैरान हो रही थी, देखो एक जानवर, अल्लाह तूने इतनी इनको अक्ल दी, अल्लाह हमारे पास तो इतनी ज्यादा अकल है इनके मुकाबले में, हम क्यों नहीं तुझ तक पहुंच पाए कि अगर कोई भी किसी को कुछ भी ना बताए तब भी मालिक तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। इस कायनात को सब देख रहे हैं, बारिश को उतरता देखते हैं, हवाओं का चलता देखते हैं, जमीन के उगना देखते हैं, जमीनों आसमान की तखलीक को देख रहे हैं, इसके अंदर जो मखलूकात हैं उनको देख रहे हैं, अपनी अपनी जिसामत को हर कोई जानता है, देखता है, इर्द गिर्द फैले हुए जो हशरात है उनको सब देखते हैं, दिन और रात का आना जाना, इसके लिए कोई पैसों की जरूरत नहीं है, ना ही किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की जरूरत है, इसलिए तो किसके लिए तो बस गौर करने की जरूरत है, फिर भी तुम नहीं सोचते, तो क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं समझते। अल्लाह ताला ने फरमाया ये अल्लाह की आयात है, वो भी आयात है जो आफाक में थी और तुम्हारे अपने अंदर भी, और ये कुरान में भी अल्लाह की आयात है, ना इस तरफ आना ना कायनात में गौर फिक्र करना, क्योंकि हम नहीं चाहते मालिक तक पहुंचना, हमारी कोई प्रायोरिटी नहीं, मालिक को जानना नहीं, बस पैदा हो गए, पता नहीं कहाँ से गिर गए थे, पैदा हो गए, बस चल पड़े, अब बस चलते ही जा रहे हैं और एक दिन मर जाएंगे, बस ये है हमारी कहानी, नहीं इतनी सी नहीं है। अक्ल इसलिए नहीं दी थी कि आओ कमाओ खाओ पियो सैरो तफरी करो फन करो एंटरटेनमेंट करो और फिर उसके बाद मर जाओ और चले जाओ इस दुनिया से, ये जिंदगी इसके लिए तो नहीं दी थी अल्लाह ताला ने। अगर तुम्हें कायनात की आयात से नहीं समझ आती तो जो अल्लाह ताला ने अक्ल दी है ना उससे इस कुरान में ही गौर कर लो, तिल का आयातुल्लाह नतलुहा अलैक बिल हक, ये अल्लाह की आयात है, हम पढ़ते हैं इनको तुम्हारे ऊपर हक के साथ, फबी ये हदीसें बाद अल्लाह ही व आयात ही यूमिनून, तो अब इन आयात के बाद कौन सी वो बात होगी अल्लाह के बाद और उसकी आयात के बाद जिसके ऊपर ये ईमान लाएंगे, जिससे ये अल्लाह ताला को पहचानेंगे, अल्लाह की जात के बाद कोई और जात है, या उसके कलाम के बाद कोई और कलाम है कि उसके बाद ये सोचेंगे, ये गौर व फिक्र करेंगे, इनको समझ आ जाएगी, ये कन्विंस हो जाएंगे, किस बात का यानी इंतजार कर रहे हैं, वो कौन सी चीज है जो इनको फिर समझाएगी, वो इससे अफजल वो कौन सा कलाम है जिसको सुन के ये ईमान ले आएंगे, बस ये गफलत से जागेंगे। अगर ये अल्लाह का कलाम होश में नहीं ला रहा और अल्लाह की जात, अल्लाह की बात, यानी अल्लाह की बात कौन सी है, हदीस बाद अल्लाह, अल्लाह की बात के बाद अल्लाह की बात कौन सी है, ये कुरान और इसकी आयात, अगर ये इंसान को होश में नहीं लाती तो फिर वो कौन सी चीज होगी जो इस मुर्दा दिल को जिंदा करेगी, जैसे बारिश जमीन को जिंदा कर देती है, इस तरह अल्लाह का कलाम दिलों को जिंदा कर देता है, लेकिन अगर अल्लाह के कलाम से भी कोई दिल जिंदा नहीं होता
तो अब और कौन सी चीज रह गई फिर उसके लिए? फिर और क्या तुम्हें मिलेगा जो कि तुम होश में आओगे? ना तुम कायनात पे गौर करते हो, ना अल्लाह की आयात पे। अल्लाहु अकबर। यानी इसका मतलब ये होता है कि ये सबसे बड़ी चीज है जिससे इंसान जागता है, जिससे इंसान कायल होता है, कन्विंस होता है, जिस जो इम्प्रेस कर देने वाली चीज है। ईमान लाने के लिए इससे बढ़ के कोई और चीज नहीं हो सकती, ना किसी और का कलाम, ना किसी और की बातें। कौन है जो अल्लाह की बात के बाद और उसकी आयात के बाद फिर भी सोया रह जाए? तो फिर वो तो ऐसा मरा हुआ है कि वो तो फिर जिंदा हो नहीं सकता किसी और चीज से। और जो अकल यहां ना इस्तेमाल करे, जो अल्लाह ताला ने कायनात को सजा दिया एक इंसान के लिए और फरमा दिया कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, जो इसको देख के भी उस रब को पहचाने ना और उसके आगे ना झुक जाए और उसकी फरमाबरदारी में ना लग जाए और हाथ बांध के उसके आगे ना खड़ा हो जाए, तो फिर वो मुर्दा नहीं तो और क्या है? वो ऐसा मुर्दा है जो जिंदा नहीं हो सकता फिर। और वाकई अल्लाह के जिक्र से जो दिल गाफिल है वो अल्लाह ताला के नजदीक मुर्दा है। तो हम इस कलाम को देखते हैं, कहते हैं हम इस पे ईमान लाए, लेकिन फिर हमारे दिल जिंदा क्यों नहीं होते? क्योंकि जब हम इसकी तरफ आते ही नहीं, इसको सुनते ही नहीं, इसको समझते ही नहीं, तो कैसे जिंदा होंगे दिल? दिल तो मरे पड़े हैं, चलते फिरते मुर्दे हैं जमीन के ऊपर जो ज्यादातर हैं। जिंदा इंसान बहुत कम है, लाशें हैं जो चल रही हैं, क्योंकि अपने मालिक से गाफिल हैं, मालिक की याद से गाफिल हैं। तो इस कलाम के बाद, इस कुरान के बाद अब कौन सी चीज भाई आएगी आपको समझाने के लिए? कौन सी और जगह होगी जहां से हिदायत मिल सके? कौन सी चीज होगी जो मालिक का पता बता सके, उसकी पहचान करा सके? अल्लाह अकबर। लेकिन फिर भी हम में से अक्सरियत इस कलाम की तरफ तवज्जो करने से बहुत परहेज करती है, इससे दूर भागते हैं। वैलुल्लि कुल्लि अफ्फाकिन अथीम। वेल है, हलाकत है, हलाकत है इंसान के लिए। कौन से इंसान के लिए? जो अफ्फाक है, इफ्क से, बहुत सख्त झूठा, ये मुबालगा इसमें। और अथीम जो बहुत सख्त गुनाहगार। अफ्फाक का ताल्लुक कौल से है, बात से है, और असीम का ताल्लुक क्या है? आजाद, जो यानी फेल से। तो कॉल और फेल दोनों की बात आ गई। और वेल कहते हैं हलाकत को भी, ये भी कहते हैं कि जहन्नुम की एक वादी है जिसका नाम वईल है। उनकी उस वादी के अंदर कौन लोग जाएंगे? वो जो बहुत झूठे, बहुत ज्यादा गुनाहगार, यानी वो लोग जो इन तमाम निशानियों को भी देख के और अल्लाह की आयात को सुन के भी, वो यही कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम नहीं, ये किसी और का कलाम है, और फिर भी अपने उसी शिर्क के ऊपर जमे रहते हैं। हर वो शख्स जो बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला और बहुत ज्यादा गुनाहगार, वो भी इसके अंदर शामिल है। तो ये अबू जहल या नजर बिन हारिस के बारे में भी नाजिल हुई, जो इस कलाम को जानते थे, समझते थे। अबू जहल ने खुद कहा था कि मैं जानता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, लेकिन मैं क्या करूं कि अगर इनकी मान ली तो बनू हाशिम की मैं कैसे मान लूं अपने ऊपर फजीलत? हमारे कबीले के ऊपर तो उनकी फजीलत हो जाएगी, मैं इनके अंडर आ जाऊं? नहीं, उनके लिए बहुत बड़ी चीज अपने तकब्बुर, अपनी अकड़, अपनी मैं और अपने आप को बड़ा समझना, ये उनके लिए था। इसीलिए उसने मान के ही ना दिया। तो वहल है, हलाकत है, और फिर ये भी एक ज़ईफ हदीस है लेकिन उसके अंदर आता है कि वैल जहन्नुम की उस वादी का नाम है कि जिसमें जमीन का पूरा पहाड़ भी डाल दिया जाए तो वो पहाड़ भी पिघल जाएगा। ये ऐसी खौफनाक वादी है। वो ये लोग कैसे हैं, इनकी सिफत बताई गई कि ये कैसे लोग हैं, कौन से लोग हैं जो अफाक और असीम हैं, कि क्या करते हैं ये। यस्माउ आयातिल्लाहि तुतला अलैहि, अल्लाह की आयात उसके ऊपर पढ़ी जाती हैं, सुनता है वो उनको। सुम्मा युसिरु मुस्तकबिरन, फिर वो तकब्बुर के साथ इसरार करता है अपने उसी अमल पे जो कर रहा है, का अल्लम यस्माहा, जैसे कि उसने सुना ही नहीं, ऐसे बन जाता है जैसे सुना ही नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, वला तकुनू कल्लदीना कालू समिअना वहुम ला यस्माउन, उन लोगों की तरह ना हो जा जो कहते हैं हमने सुना और वो सुनते नहीं है। अल्लाह रहम फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा मिंबर पे ये बात फरमाई थी कि तुम रहम करो, तुम पे रहम किया जाएगा, तुम माफ करो, तुम्हें माफ किया जाएगा। हलाकत है उन लोगों के लिए जो सिर्फ बातों को सुनते हैं यानी अमल नहीं करते। अल्लाह ताला रहम फरमाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को उनसे तशबीह दी कि वो ऐसे बर्तन है जैसे कि जिसमें कोई चीज ही नहीं ठहरती, यानी जिसको हम कहते हैं ना एक कान से सुना दूसरे से निकाल दे, सुन तो रहे हैं जा तो रही है दूसरे से निकल गए। तो ये कुरान सुनते हैं लेकिन ऐसे कि जैसे सुना ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर इतना तकब्बुर है। देखिए जब इंसान कुरान करीम को सुनता है और उसको समझता है तो उसके बाद जरूरत इस चीज की होती है कि वो अपनी मैं को खत्म कर दे, मैं कोई चीज नहीं और मेरी अकल कोई चीज नहीं और मेरी समझ कोई चीज नहीं और मेरे फलसफे कोई चीज नहीं, ये कोई भी चीज नहीं, मेरी मर्जी मेरी ख्वाहिश, ये मैं जो है ना इसको बिल्कुल खत्म करना पड़ता है, तब आजजी आती है और तब इंसान इस कुरान के आगे झुक जाता है कि मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूं, जो अल्लाह का हुक्म है मैं उसके ताबे। फिर इंसान कुछ पा सकता है इससे, और अगर मैं ही करते रहना तो फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा, पढ़ पढ़ के भी सर्टिफिकेट तो मिल जाएंगे शायद लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा, आखरत के लिहाज से इस दुनिया के लिहाज से कुछ हासिल नहीं होने वाला कि हिदायत वाली जिंदगी मिल जाए, वो नहीं मिलेगी, अल्लाह ताला राजी हो जाए वो नहीं होगा। तो उसके लिए तो अपनी मैं को छोड़ना पड़ेगा। जब तक तकब्बुर अपने अंदर है ना कि आप स्ट्रांगली समझते हो कि मैं जो कहती हूं वो ठीक है, मैं जो समझती हूं वो ही सही है, तो अगर इतने उसके ऊपर जमे में और इतने उसके ऊपर सख्त है ना तो फिर कुरान पढ़ पढ़ के भी कुछ नहीं मिलेगा। कुरान को खोलते हैं ना तो इस मैं को साइड पे रखे तब इसके पास आए, क्योंकि अदरवाइज से फायदा नहीं उठा सकेंगे। और इतनी सख्त वईद है उनके लिए जो सुनते हैं और समझते हैं, यानी उनके ऊपर तिलावत की जाती है कि फिर भी ढीठ के ढीठ वहीं अपने तकब्बुर के अंदर, ना अपना रवैया बदलना, ना अपनी जिंदगी बदलना, ना अपना अमल बदलना, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, क्योंकि दे थिंक दे आर गुड, हम ठीक हैं, हमें क्या जरूरत है, हम कौन सा ऐसा कुछ बुरा करते हैं, हम कौन सा गलत है। तो जब किसी का तर्ज अमल ऐसा हो जाता है तो फिर जाहिर है 100 दफा भी आप उसके सामने ये कलाम पढ़ते रहे तो कोई फायदा नहीं होगा, वो ऐसा ही है जैसे सुने सुना ही नहीं। तो इसका मतलब है पढ़ने वाले में, समझने वाले में और ना समझने वाले में फर्क होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि आप में आप अपने आप को कहें वो भी तो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, अगर वो करते हैं ना तो उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, उन्होंने नहीं समझा हुआ, वो नहीं सुनने वाले, उनको छोड़ दें, या वो हैं जो सुनते हैं और फिर उसके बाद वो वहीं के वहीं ढीठ के ढीठ खड़े हैं जिनका यहां जिक्र आया। क्या आप इनमें से बनना चाहते हैं या उनके बराबर होना चाहते हैं जो इल्म नहीं रखते? तो फिर उसके बाद उनकी मिसाल ना दें कि वो भी तो ऐसे करते हैं और फलां भी तो ऐसे करता है। सोचें कि ये जब मैंने इस कलाम को सुन लिया तो मेरे पर एक जिम्मेदारी है कि मैंने इसको अपने अंदर उतारना है, मेरे अंदर फर्क होना चाहिए। मैं अपनी अकल को एक साइड पे रख दूं और लोग क्या करते हैं उसको भी एक साइड पे रख दूं, और फिर मैंने वो करना है जो मेरे रब ने फरमाया। अगर इस कलाम को सुन के भी मुझे हिदायत ना मिली और इसको समझ के भी मेरा रवैया बदला ना और मेरा लाइफस्टाइल ना बदला और मैं वहीं की वहीं खड़ी हूं, तो फिर ये है वईद, वईल है। और फिर कोई चीज ना फिर जगा नहीं सकती, फिर वो मुर्दा दिल हो जाएगा कि जो कभी जिंदा नहीं हो सके। तो वाकई फिर दिल ऐसा हो जाता है कि फिर कोई भी बातें करते रहो, मरने की, कयामत की, कोई रुलाने वाली भी बात हो, जहन्नुम की बात भी हो जाए, डरता ही नहीं दिल। फिर सुन सुन के सुन्नी हो गए, फिर कुछ असर ही नहीं करता, फिर ऐसे इंसान मुर्दा हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि जब इस कलाम को सुना जाए तो इसरार ना किया जाए अपनी ही बातों पे, उसी के ऊपर ढीठ बन के अड़े नहीं रहे, उनको छोड़ दे। अल्लाह की बात के मुकाबले में अपनी बात को बड़ा ना समझे, अपनी बात को प्रायोरिटी ना दे, झुक जाए। या अल्लाह समय ना वह आता ना, हमने सुन लिया, हमने मान लिया या रब। तावीले ना दे, जस्टिफिकेशंस ना दे, अपने बस सुना उसके बाद सर झटका, क्लास खत्म हो गई है और बस अपनी दोबारा वही चीजें करना शुरू हो गए। तो क्या सुन रहे हैं फिर, क्या सीख रहे हैं फिर, क्या समझ आ रही है फिर? तो इसलिए यहां पे उन सब लोगों के लिए जो ये वो नहीं है जो कुरान को जिन्होंने कभी नहीं सुना, उनकी नहीं बात हो रही, जो सुनते हैं अल्लाह की आयत को जब पढ़ी जाती है फिर भी ढीठ है, इतने ढीठ हैं कि ऐसे लगता है इन्होंने सुना ही नहीं। अपने रवैये देख लें, चेक करें अपने आप को, ये क्या मैंने अपनी जिंदगी में कोई तब्दीलियां लानी शुरू की हैं या वहीं की वहीं खड़ी हूं? क्या मेरे अमल से पता चलता है कि मैं डिफरेंट हूं उससे जो नहीं सुनता, जो नहीं समझता, या वो ही है मेरा अमल? कंपेयर करें ना, मैं भी वैसे ही काम कर रही हूं जो वो कर रहे हैं जो कुराने करीम को समझने वाले नहीं है। देखें कि कितनी सिमिलैरिटी है। अगर तो वैसा ही अमल चल रहा है तो इसका मतलब है कि हम उनमें से हैं जिन्होंने कअल्लम यस्माहा, गोया के नहीं उन्होंने सुना इसको, फिर हम इस कैटेगरी में से हो गए। तो ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि जब सुन के भी इंसान को हिदायत ना मिले ना और उसकी जिंदगी ना बदले, तो वो फेज आ जाता है फिर कि दिल सख्त हो जाता है, फिर कोई बात असर नहीं करती। जैसे मैंने बताया कि फिर आपके लिए जहन्नुम की बातें भी मामूली हो जाएंगी, वो इतनी दफा सुनी हुई है, वही वाली बातें हैं, आग का अजाब है, ये है वो है बस। लेकिन अगर आप अमल करने लगेंगे ना, फिर आपका दिल नरम रहेगा, फिर असर रहेगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मेरा दिल सख्त ना हो और मुर्दा ना हो जाए, तो फिर अपनी अकल को एक साइड पे रख के जब सुने तो ऐसे सुने कि आज उतर रहा है और मेरे लिए उतर रहा है और ये मुझे कहा जा रहा है। वो उसके बारे में सोचना और उसके बारे में सोचना ये छोड़ दें। और दूसरा, अपने आप को चेक करें, मैं पहले कहाँ थी? अपने शादी ब्याहों को चेक करें, अपने ओकेजन्स पार्टी टाइम को चेक करें, अपने जो खुशी के लम्हात है जिसमें पहले मैं आपे से बाहर हो जाया करती थी, अब मेरे रवैये क्या है? कोई परेशानी या कोई गम या कोई ऐसा मसला आता है, पहले मैं क्या करती थी, अब मैं क्या करती हूँ? क्योंकि खुशी और गम ही ऐसे मवाके होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा इंसान का चेक हो जाता है उसका ईमान कहाँ है, वो किधर खड़ा हुआ है। आम जिंदगी में तो फिर भी हम अपने आप को कंट्रोल करके ही रखते हैं। उसमें जिसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, असल वो बंदा है जिसको वाकई को हिदायत मिली है। और जो उसमें आपे से बाहर हो जाते हैं, फिर उसका मतलब है कि बस आम जिंदगी में एक बस थोड़ी देर के लिए नेक बन के बैठ गए, और उसके बाद ऐसे मौके आए तो बस सब कुछ उतार के फेंक दिया। तो ये देखेंगे फिर हम वाकई सुन के सुनने वाले हैं या फिर सुन के दूसरे कान से निकालने वाले। बशीरू भी अता बिन अलीम, बशारत दे दो फिर उसको दर्दनाक अजाब की। बशारत तो खुशी की बात की दी जाती है, खुशखबरी तो खुशी की चीज की सुनाई जाती है। ये उनके ऊपर तंज है कि फिर तुम इसी काबिल हो कि तुम्हारे लिए दर्दनाक अजाब। तो ये आयत हमारे लिए बहुत सोचने की है, इसको हाईलाइट कर लें। हमने ऐसा नहीं बनना, अल्लाह ताला इस तरह के रवैये से हमें बचाए। जाहिर है अगर एक उस इंसान के ऊपर आयात पढ़ी जाए और वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, इसका मतलब है अंदर कोई तकब्बर तो है ना, अपने आप को कोई चीज ही समझता है जो ये अपनी अना को गिव अप नहीं कर रहा, अपने आप को झुका नहीं रहा इस कलाम के आगे। इसीलिए तकब्बुर कहा गया है यहाँ। वो तकब्बुर है ही ये, हक को झुटला देना और लोगों को हकीर जानना। हक आ गया है सामने तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए? समझ आ गई है ना बात की, आपके सामने पढ़ी गई है, समझ आ गई, उसी वक्त कह दें बस समय ना हुआ था। लेकिन हक कहा जाए और उसके बाद खुद को बड़ा समझना, अपने इल्म को अपनी राय को बड़ा समझना, यही तकब्बुर है। और जिसके अंदर राय के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ, जन्नत में तो नहीं जा सकता वो, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो तकब्बुर छोड़ना होगा कुरान के आगे, उसके मुकाबले में तकब्बुर ना करो। छोड़ दो कि मैं कुछ नहीं हूं और मेरी अकल कुछ नहीं है और मेरी समझ कुछ नहीं है। वह इदा आलिमा मिन आयातिना शैन तखजुहा हुजुआ, और जब वो जान लेते हैं हमारी आयात में से शैन, कुछ भी कोई बात भी उनको पता चलती है, उसको मजाक का निशाना बनाते हैं। वो लोग तो करते ही थे ऐसे। अच्छा 19 फरिश्ते हैं जहन्नुम के ऊपर, एक ने हंस के कहा 19 है तो मैं तो इतना पहलवान हूं, 19 का तो मैं अकेले ही मुकाबला कर लूंगा जी। हंसते थे इसके ऊपर, फिर शोशे बनाते थे कुरान की आयात को पकड़ के। असल में अपने आप को बड़ी चीज समझते थे ना, आज क्या रवैये हैं? वो तो काफिर थे, काफिरों के तो इस तरह के रवैये होंगे, उनके लिए तो ये दीन की बातें कुछ थी नहीं ना। आज मुसलमानों ने भी यही तरीके अपना लिए। अव्वल तो कुराने पाक को सुनना ही नहीं, वो समझते ही नहीं अपने लिए जरूरी इसको। भाई देखिए ना, आप जरूरी समझेंगे तो आप मिसाल के तौर पे आप जरूरी समझते हैं कि मैं ये देखूं ये दवाई मैं ले रही हूँ इसके क्या साइड इफेक्ट है, ये कितनी दफा लेनी है, जरूरी समझते हैं ना। ऐसे ही तो नहीं खाना शुरू कर देते आप, उसके ऊपर पढ़ते हैं भाई कितने कैप्सूल खाने, जरूरी समझा तो आपने पढ़ा भी, इतनी तकलीफ उठाई पढ़ने की। जब आप कुरान को जरूरी नहीं समझते ना, तो कहते हैं क्या है, मतलब फर्ज भी है कि नहीं है, ऐसे ही आप लोग इतना इसको बनाया हुआ है। तो हम जरूरी नहीं समझते क्योंकि हमारे अंदर इतना तकब्बुर होता है कि हम जिस तरह से चल रहे हैं ना वो सही है। ये हमें क्या बताएगा कि कैसे चलना है, कुरान बताएगा अब हमें? नहीं, इतनी सी भी अहमियत हम नहीं देते। किसी बड़े की बात को ही सुन लेंगे, कहीं कोई किसी जगह काम करता है तो अपने बॉस की सुन लेता है, उसने क्या कहा है आज, क्या फरमान बॉस का जारी हुआ है तो उसको पढ़ लेगा। कोई नया कानून बनता है आप उसको देखते हैं, हुकूमत ने अभी ऐलान किया उसको सुनते हैं। लेकिन कायनात का मालिक, कायनात का हुक्मरान कोई बात फरमा दे और इंसान जरूरी ना समझे, ना मुझे नहीं इसकी परवाह, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो अव्वल तो सुनना ही नहीं है, और सुनना भी है तो बस इतना ही कि तिलावत हो रही सर पे दुपट्टे ले लो, कहीं बेचारियों के पास तो दुपट्टे भी नहीं होते, फिर वो दूसरों से लेके कहती सर पे रख लो। इतना ही कुरान का एहतराम इनके लिए काफी है बस, कि कहीं तिलावत हो रही किसी फंक्शन पे, बस उस सर पे छोटा सा एक रख लिया, वो भी बार बार गिर रहा होता है, वो कभी खत्म करें तो हमारे सरों से उतरे, बस इतना एहतराम है, इससे आगे 1 इंच नहीं बढ़ना। बचपन से बस इतना ही है, बूढ़े हो जाते हैं इतना ही रहता है। सिर्फ इतना कुरान का पता है, कहीं 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 तिलावत हो जाएगी बस उतना सुन लिया, ठीक है। तो अक्सरियत का हमारे अंदर ये हाल है। अच्छा, जो सुन भी ले तो उसके बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह, कहीं कोई बात कान में पड़ गई तो अब आप देख लें कि फिर उसके फिर लतीफे बना लेना, उसकी हंसी उड़ाना, कोई नकाब में है तो उसको निंजा कह रहे हैं, कोई हूरे ऊरों के जिन्होंने लतीफे बनाए हैं, कोई जन्नत और जहन्नुम के लतीफे बना के बैठे, अजी फलां जहन्नुम में चला गया, उसने कहा इतनी गर्मी, उसने कहा ये सब आपके लिए ये मजाक है। कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप का मजाक उड़ाते हैं? कोई भी नहीं, बल्कि कोई मजाक उड़ाए तो बुरा मानते। हम अपने माँ बाप का मजाक करते हैं क्या? तो क्या अल्लाह ताला और उसकी आयात और उसका रसूल ही इस काबिल है कि उनका मजाक करा जाए? अल्लाह ताला ने ये कुरान में फरमाया कि वो हंसी उड़ाते हैं और फिर कहते हैं हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो बस ऐसे, हम तो बस वी वर जस्ट जोकिंग, इतना भी आप सीरियस हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह उसकी आयात उसका रसूल ही इस काबिल है कि आप उनका मजाक उड़ाएं। यही इज्जत है उनकी आपके दिल के अंदर, ये अल्लाह की निशानियां हैं। जहन्नुम का जिक्र आया तो इंसान तो रो पड़े, उसके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, वो डर जाए, खौफ से उसका दिल कांप उठे। कैसे, मैं तो सोचती हूँ अल्लाह वो कैसे लोग थे कि तंदूर भी भड़कता हुआ देखते तो जहन्नुम याद आ गई और बेहोश हो गए, और हम जहन्नुम का नाम लेके भी डरते नहीं है। और जन्नत की बातें हैं और हूरों की बातें हैं और उसके ऊपर हंसी मजाक है, इनको तो 70 हूरें चाहिए, ये तो हूरों के ये शौकीन है, ये हमारे हाल। तो इस कुरान को भी मजाक बनाया हुआ, इस कुरान को भी ऐसे समझा हुआ कि ये ऐसे, और मजाक इंसान दरअसल किस चीज का उड़ाता है जिसकी कोई अहमियत नहीं देता ना, कोई उसके नजदीक वो बड़ी चीज नहीं होती, उसका मजाक उड़ाते हैं। किसी बड़े मकाम और मर्तबे वाला जिसके हमारे दिल के अंदर बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा हो, उसका मजाक थोड़ी हम उड़ाते हैं। लेकिन फिर भी हम कितनी जुर्रत करते हैं जब मजलिसों में बैठ के, महफिलों में बैठ के ऐसे लतीफे करते हैं और फिर मजाक करते हैं। फिर दीन वालों का मजाक, मुझे याद है बचपन से ही हम देखते थे कि ऐसे लतीफे बनाए होते थे कि कोई दाढ़ी वाला साथ बुरके वाली खड़ी, साथ बच्चों की एक लाइन लगी हुई, इसके ऊपर मजाक, ये देखे इनके कितने बच्चे होते। मतलब हमने इस चीज को कुछ ऐसा, दीन के जो शायर अपनाने वाले लोग हैं या कोई दीन पे चलने वाला है उसको भी ऐसा मजाक का निशाना बनाएंगे ताकि लोग कभी जुर्रत ही ना करें इस तरह का हाल हुलिया अपनाने की या ऐसे बनने की। हाँ, हमारे नजदीक जो गाने बजाने वाले हैं, जो एक्टिंग करने वाले हैं, उनको तो हम साथ सलाम करते हैं, उनकी इतनी इज्जत है, उनके तो ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े हो जाते हैं लाइनों में। लेकिन जो दीन पे चलने वाला या दीन का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, कोई इमाम होगा या कोई होगा, उसकी रत्ती बराबर भी इज्जत नहीं, कोई उसका मकाम नहीं हमारे दिलों में, क्योंकि इस दीन का कोई मकाम नहीं है ना। तो ये याद रखें कि ये मजाक इसीलिए होते हैं क्योंकि जब इंसान उस चीज को अहमियत नहीं देता, और जिसको अहमियत दी जाए फिर इंसान उसी के आगे झुकता भी है, उसकी कदर भी करता है, उसको सीने से भी लगाता है, जिसको आप बड़े मर्तबे का समझते हैं फिर उसी के आगे भी झुकते जाते हैं। तो जो इसको हक समझेगा इस कुरान को, जो इसको बड़ा समझेगा, जो अल्लाह की बात को समझेगा कि वो बड़ी है, तो फिर वो अपनी ख्वाहिश को भी पीछे कर देगा, अपने शौक को भी पीछे कर देगा, वो अपनी अकड़ को भी पीछे कर देगा, अपनी मर्जियों को छोड़ देगा, अपनी राय को छोड़ देगा, वो कुछ नहीं समझेगा इन सब चीजों को और वो झुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए कि ये हमारे लिए नॉन सीरियस है, इसलिए इसके जोक्स हैं, इसीलिए इसकी तस्दीक की जाती है। और जितना हमारे दिल के अंदर, जैसे मैंने कहा, इस कुरान का एहतराम होगा, जितनी इसकी इंपॉर्टेंस होगी, उतनी हमारी जिंदगी में अल्लाह ताला की इंपॉर्टेंस है। वरना ये झूठ है कि हमें अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत है और हम तो इतनी जान दे दें इस दीन के लिए, ये झूठ है। जान देना तो दूर की बात, हम तो एक शौक भी दे नहीं सकते, एक अपनी ख्वाहिश भी कुर्बान नहीं कर सकते। जान की कुर्बानी तो आपसे कौन मांग रहा है? अपने लाइफस्टाइल को कुर्बान नहीं कर सकते। उलाइक लहुम अज़ाब मुहीन, ऐसे ही लोगों के लिए जलील कर देने वाला अजाब है, रुसवा करने वाला। वहां पे रुसवाइयां होंगी ऐसे लोगों की, ये आज हंसी उड़ाते हैं अल्लाह के कलाम की, सुनी अनसुनी करते हैं इसको, इसके ऊपर लतीफे बनाते हैं। देखिए एक बंदा तो जिसको पता ही नहीं है, ना उसने कभी सुना ना कुछ है, वो एक अलग है कैटेगरी। लेकिन एक बंदा है जिसको पता है, फिर भी वो मजाक उड़ाने से बाज ना आए, तो खुद सोचे फिर उसके ऊपर कितना ज्यादा अल्लाह ताला का गजब होगा।